जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन
धाम,
जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तभी हम श्री गिरिराज के अंतर्गत बहुत ही अद्भुत स्थान पे आए हैं। इसमें से कितने लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं? हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। इस गांव का नाम गांठोली है, गांठोली, और दूसरा नाम है गुलाल कुंड, जो कुंड के सामने हम बैठे हुए। तो एक बार राधा और कृष्ण यहाँ पर बैठे हुए थे एकांत में, और जब बैठे एकांत में तो कैसा होता है, एब्सॉर्प्शन यानी मग्नता, पूर्णतः मग्न बैठे रहते हैं। तो फिर दूर से सब सखियाँ उनको देखती हैं, और ललिता जी फिर पीछे से आकर छुप कर कृष्ण का दुपट्टा और राधा रानी का दुपट्टा को बांध देते हैं, गांठ बहुत नज़दीक जोरदार गांठ बांध देते हैं। इसलिए इसका गांव का नाम पड़ा है गांठोली, जहाँ पर इनकी गांठ बांधी गई थी। हरे कृष्णा। तो बहुत देर के बाद जब उनका मिलन जो भी है वो होश में आते हैं जब खड़े हो जाते हैं तो देखते हैं कि हम बंधे हुए हैं। जब बंधे हुए सब लोग छुप छुप के देखते हैं तो जोर से हंसते हैं, बहुत जोर से हंसते हैं। सब सखियाँ छुप कर देखती रहती हैं क्या चल रहा है। तो जब उठते हैं तो वो गांठ से बंधे हुए देखकर सब गोपियाँ हंसती हैं और तुरंत उनको गुलाल से नहलाती हैं, मतलब रंग रंग मारते हैं। तो कुछ जगह पर ऐसा लिखा है कि उन्होंने इतना रंग चढ़ाया उनके ऊपर, इतना गुलाल की पिचकरियाँ मारी, इतनी गुलाल की पिचकरियाँ मारी कि वो पूरा कुंड बन गया पीछे का, इसलिए उसका नाम गुलाल कुंड पड़ा है। एक जगह ऐसा वर्णन आता है कि उनके ऊपर बहुत रंग की होली खेली खेली गई, और उसके बाद में राधा और कृष्ण ने इस कुंड में स्नान किया तो सारा गुलाल जो है कुंड में चढ़ गया, इसलिए नाम गुलाल कुंड पड़ा। और ये लीला जो है ना वो इतनी अद्भुत लीला है कि वृक्ष भी जो जिसके नीचे बैठकर ये लीला हुई इस स्थान पर, वो वृक्ष भी उस चेतना से भावना से प्रेम से इतने प्रभावित हो गए कि आप वृक्ष को अगर बहुत ही गौर से देखेंगे तो एक वृक्ष काले रंग का है, वो तमाल वृक्ष है। देख रहे हैं आप, मैं जो खड़ा हूँ वो नहीं, वो तो नीम का पेड़ है। पीछे पीछे जो है ना, पीछे एक वृक्ष है, वो लगता है छोटा सा है लेकिन वो काले रंग का वृक्ष है, वो तमाल वृक्ष है, वो श्री कृष्ण भगवान का प्रतीक है। और पीछे एक बड़ा गोरे रंग का वृक्ष है, वो कदम का वृक्ष है, वो राधा रानी का प्रतीक है। और आप गौर से देखेंगे तो बीच में एक गांठ भी है वो दोनों के, देखा आपने? ऐसा कभी होता है क्या? केवल धाम में हो सकता है ऐसे। तो ये अद्भुत दर्शन है गुलाल कुंड, और यही एक एक ही जगह है पूरे ब्रज में, पूरे और पूरे ब्रह्मांड में, यहाँ पर 12 महीने रोज होली खेली जाती है। केवल ये होली का मौसम इसलिए नहीं, आप कभी भी आइए यहाँ पर होली खेली जाती है। ये चिरंतन होली का लीला स्थली है, ऐसा पवित्र स्थान है ये। तो होली जो होती है ना, वो रंग से खेलते ना हम लोग रंग, तो रंग जो है वो यहाँ पर ऐसे कुछ पेड़ के पौधे मिल पौधे के पत्ते मिलते हैं, का नाम मैं भूल गया। वो जो पत्ते होते हैं उसको ये लोग गर्म पानी में उबालते हैं और गुनगुने पानी के उसके गुनगुने पानी से होली खेलते हैं। और जब वो गुनगुना पानी उस पेड़ का गर्म किया हुआ जब अपने त्वचा पर आता है ना, त्वचा खिल जाती है, उसमें बहुत रौनक आ जाती है, चमक आ जाती है। तो वो आज भी वृंदावन में होली के समय पर मिलता है पत्ता, सबको पता नहीं होता है, किसी की दुकान में मिलता है, और उसी से एक्चुअली होली खेली जाती है। और गुलाल से भी खेलते हैं, अबीर से भी खेलते हैं, अबीर गुलाल, लेकिन ये सब शुद्ध वस्तुएं हैं, तो सब शुद्ध वस्तुएं हैं। केसु, हाँ केसु, तो वो वृंदावन में मिलता है, यहाँ पर भी मिलता होगा, लेकिन वृंदावन के बाजार में मिलता है किराने वाले के पास। उसको उबाल के होली खेलते, तो एक्चुअल जो भगवान के साथ भी होली खेलते हैं ना, वो उसी रंग से खेलते हैं। तो लाल भी बनता है और भी कलर बनते हैं उसके, लेकिन बेसिकली वो पेड़ के पत्ते पर, पत्ते में वो शक्ति है जिससे वो त्वचा को खिला देती है, खिलकर त्वचा जो है कांतिमान हो जाती है। राज और रंग जो होता है ना, रंग जो होता है ना, वो रंग के माध्यम से राधा कृष्ण भगवान अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। रंग एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से वो प्रेम से अपना प्रेम प्रकट करते हैं। और होली भी ये बहुत ही क्या कहते हैं, उच्च कोटि का प्रेम प्रकट करने का उत्सव है। और जो सर्वोच्च होता है, जो सर्वोच्च क्रिया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होती है ना, वो भौतिक दुनिया में बहुत घटिया चीज़ होके प्रकट होती है। हाईएस्ट चीज़ जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, वो भौतिक दुनिया में बहुत ही घटिया और विकृत रूप में प्रकट हो जाती है। तो आजकल लोग क्या करते हैं, वो कीचड़ देते हैं, क्या ऑयल पेंट और क्या केमिकल, बहुत क्या क्या भयंकर चीज़, विषैली चीज़ें यूज़ करते हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती लगाते हैं और कहते हैं होली है। वो किसी जिनकी इच्छा नहीं है उनके ऊपर भी वो रंग के गुब्बारे फेंकते हैं, तो क्या क्या करते रहते हैं। यहाँ पर तो धुलेटी के दिन कोई निकलता ही नहीं बाहर, क्योंकि गटर का कीच निकाल के लोगों को फेंकते रहते हैं। इतना घिलौना और विकृत कार्य लोग करते हैं। सबसे पहली बात समझना जरूरी है कि होली जो है ना, वो प्रेम से होती है, ज़बरदस्ती से होली नहीं होती है। होली प्रेम से खेली जाती है और उसका भी तरीका है कि जो कोई कनिष्ठ छोटे व्यक्ति हैं, वो बड़े लोगों के पैर छूते हैं, उनके पैरों में या तो उनके हाथ में रंग लगाते हैं, और जो इक्वल होते हैं इक्वल, उनको प्रेम से गाल पे रंग लगाते हैं और गले मिलते हैं प्रेम से। उसमें कोई विभत्स नहीं होता है, विभत्स यानी कोई घासली एक्टिविटी नहीं होती है, जोर ज़बरदस्ती जिसके मर्जी के खिलाफ इसको नहीं करना है फिर भी ज़बरदस्ती, उससे होली नहीं होती है। और जो कनिष्ठ होते हैं वो, उनको वरिष्ठ लोग आशीर्वाद देते हैं और दक्षिणा भी देते हैं और भेंट भी देते हैं, प्रेम से उनको गले लगाते हैं और प्रेम से रंग के माध्यम से अपना रिलेशनशिप जो है ना, रिश्ता जो है वो प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। कि होली केवल प्रेम को बढ़ाने के लिए है, किसी को दुख देने के लिए नहीं। यहाँ तक कि ऐसा बताया गया है कि जो जिसका मन में बेबनाव आ गया है, कोई किंतु परंतु हो गया है बीच में, वो मिटाने के लिए भी होली का उत्सव है। कि होली के दिन सब अपने भेदभाव, सब गिले शिकवे मिटाकर लोग एक हो जाते हैं, होली का बहाना ढूंढकर प्रेम को दोबारा बसाते हैं। तो हमें भी अगर होली खेलना है तो ऐसे रिस्पेक्टफुली होली खेलना है, पैर छूकर गले लगाकर प्रेम से होली खेलना है। दूसरे यहाँ का जो लीला है वो ये है कि यहाँ पर वल्लभाचार्य महाप्रभु की बैठक है, वो पुष्टि मार्गी गुरु गुरुदेव हैं, विष्णु स्वामी के अनुयायी हैं, शिव संप्रदाय पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं। तो जो मैंने आपको बताई ना कहानी, कुक विट्ठलनाथ जी, गोकुलनाथ जी, ये इनके ही पुत्र थे और ब्रज में इनका काफ़ी ख्याति है और कई लीलाओं में इनका वर्णन आता है। वल्लभाचार्य जी का भी आता है, गोकुलनाथ जी, विट्ठलनाथ जी के भी आते हैं, उनके सखाओं का भी आता है, और गुजराती लोग ज़्यादा करके इनके फॉलोअर्स हैं। यतिपुरा इनका मेन स्थान है, यतिपुरा यानी यति माधवेंद्रपुरी, वो यतुपुरा में आए थे जहाँ पर गोपाल जी का प्राकट्य किया था, इसलिए उसको यतिपुरा यानी यतिपुरा नाम पड़ा हुआ है। तो इसी जगह पर श्री गोपाल जी की लीला भी है, श्रीनाथ जी की। तो श्रीनाथ जी महाराज, मैंने आपको बताया कि श्रीनाथ जी प्रकट रूप में और मूर्ति रूप में दोनों लीला करते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी वृंदावन आए, और वृंदावन से मथुरा पहले आए, वहाँ से वो यात्रा करते करते काम्यवन, नंदगांव करते करते गोवर्धन में जब आए, तब उनको श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और वहाँ पर बेहोश हो गए चैतन्य महाप्रभु। तो उसके बाद में वो कई दिन गोवर्धन में रहे, और वहाँ पर उन्होंने राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकट किया। फिर उनको माधवेंद्रपुरी की बैठक वहाँ पर है, जहाँ पर हमने वो कुआं कुआं को परिक्रमा किया ना हमने, वो कुएं के सामने माधवेंद्रपुरी की बैठक है। तो माधवेंद्रपुरी की कहानी भी उन्होंने सुनी, और ऐसा अद्भुत अनुभव उनको आया कि जब मथुरा में उतरे थे तो एक ब्राह्मण के घर में उनका भोजन था, सनोडिया ब्राह्मण। तो सनोडिया ब्राह्मण जो थे वो उन्होंने भोजन कराया उनको अपने घर पे, और कीर्तन में नृत्य किया सब लोग ने मिलकर। लेकिन सनोडिया ब्राह्मण का जो नृत्य करने का तरीका था वो देखकर महाप्रभु बड़े प्रभावित हो गए, और नृत्य के बाद में उनको पूछा कि आप कौन हो, आपका कुछ अलग भाव मुझे मिलता है। तो उन्होंने कहा कि मैं माधवेंद्रपुरी का शिष्य हूँ। तो माधवेंद्रपुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी के गुरु जी हैं, यानी कि वो चैतन्य महाप्रभु जी का काका गुरु हो गए ना, वो ईश्वरपुरी के गुरु भाई हो गए। तो बहुत प्रभावित हो गए वो। तो सनोडिया ब्राह्मण जो थे वो कहते हैं कि पहले तो वो थोड़ा सा संकोच कर रहे थे महाप्रभु जी को बुलाने के लिए, कहते मैं थोड़े निचले दर्जे का ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रियों का और वैश्य लोगों का ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मणों का पौरोहित्य नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे आपको घर पे बुलाना तो है लेकिन मैं बहुत संकोच कर रहा हूँ। लेकिन उनका नृत्य देखकर जब उन्होंने उनको भाव पूछा और समझ गए कि ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, तो उन्होंने कहा उनके मुझे उससे कोई मतलब नहीं है जो आप बोल रहे हो, मुझे आपके घर में प्रसाद पाना है क्योंकि आप माधवेंद्रपुरी से कनेक्टेड हों। तो फिर वहीं से वो आगे चले, और उनसे उन्होंने माधवेंद्रपुरी की सारी बातें सुन ली। अर्थात भगवान तो सब जानते हैं, भगवान को कुछ जानने की जरूरत नहीं, फिर भी लीला में सबको पूछताछ करते हैं, राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है ऐसे पूछते हैं, सब लीला में करते हैं। लेकिन सनोडिया ब्राह्मण से वो माधवेंद्रपुरी की सारी कहानी सुनते हैं, कैसे माधवेंद्रपुरी जतिपुरा आए थे, वहाँ गोपाल जी का प्राकट्य किया था, अभी गोपाल जी गोवर्धन में विराजमान हैं। तो उनके मन में बहुत आतुरता उत्पन्न होती है कि मुझे गोपाल जी को दर्शन करना है, लेकिन गोपाल जी गोवर्धन पे हैं और चैतन्य महाप्रभु कभी भी गोवर्धन पे चढ़े नहीं। गौड़े संप्रदाय में कोई भी गोवर्धन पे नहीं चढ़ता है, हम लोग ब्रह्माचल में चढ़ते हैं, नंदीश्वर में चढ़ते हैं, लेकिन गिरिराज गोवर्धन पे नहीं चढ़ते, दूर से प्रणाम करते हैं। तो महाप्रभु चैतन्य का ही अनुगमन करते हैं हम लोग। तो महाप्रभु जी दुखी थे कि मुझे गोपाल जी का दर्शन नहीं हो रहा है क्योंकि मैं ऊपर नहीं जा सकता। तो व्याकुल हो गए बहुत वो, और सोचने लगे क्या किया जाए अभी। तो ये उनका भाव देखकर गोपाल जी भी व्याकुल हो गए, जो पर्वत पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने एक लीला की, उन्होंने ना गांव में पूरे जतिपुरा में ऐसा एक बवाल फैला दिया कि मुसलमान लोग अटैक करने आ रहे हैं, मुगल लोग आ रहे हैं। तो मुगल लोग आने के जब अफवाह फैल गई, अफवाह तब तो अफवाह नहीं थे वो सच था, तो फैल के सब लोग डर गए। तो पुजारी लोग क्या किया उन्होंने, पुजारी लोगों ने तुरंत गोपाल जी के विग्रह को उठाया और भाग के छुपा के उनको यहाँ लेके आए, गुलाल कुंड की जगह पर यहाँ पर लेके आए। और जब भी जैसे ही पता चला महाप्रभु चैतन्य को कि गोपाल जी के विग्रह को गुलाल कुंड में लेके आए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए वहाँ से यहाँ आए, और 7 दिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रहे अपने सारे भक्तों के साथ, और 7 दिन उन्होंने गोपाल जी का सेवा किया, और 7 दिन धूमधाम से कीर्तन किया। फिर अफवाह, मतलब लोगों को पता चला कि अफवाह ही थी, सच नहीं था, तो फिर चैतन्य महाप्रभु के नेतृत्व में कीर्तन पार्टी, कीर्तन करते 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 फिर गिरिराज के तलेटी तक पहुँचे, फिर गोसाई लोग गिरिराज गोपाल जी को लेकर ऊपर पहाड़ पे चढ़े और वहाँ पर स्थापन कर दिया। तो भगवान अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक बार नहीं, उन्होंने अनेक बार ऐसे नाटक किया, जब रूप सनातन गोस्वामी को दर्शन करने का इच्छा हुआ तो फिर गोपाल जी ने ऐसे ही अफवाह फैलाई कि कोई आतंक हो रहा है, आतंक हो रहा है। तो फिर उनके गोस्वामी लोग जो है उनकी मूर्ति को लेकर मथुरा भागे और मथुरा फिर गिरिराज जी गोपाल जी ने 30 दिन निवास किया। सारे रूप सनातन आदि गोस्वामी सब लोग मथुरा में थे और 1 महीने तक उन्होंने गोपाल जी का प्रत्यक्ष सेवा किया और धूमधाम से कीर्तन सत्संग किया। फिर गोपाल जी लौट कर गोवर्धन आए, फिर पहाड़ पर चले गए। तो भगवान को और भक्तों को एक दूसरे से मिलने से कोई रोक नहीं सकता है और भगवान बड़े अद्भुत तरीके से उनको मिल सकते हैं। तो प्रेम होना चाहिए, बस प्रेम होगा तो भगवान सब अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं। जो आपको विश्वास नहीं होगा वो भगवान कर सकते हैं, उनके लिए सब मुमकिन है। तो ऐसा ही अद्भुत स्थान है, यहाँ पर 12 महीने होली खेली जाती है। अब इस कथा जब समाप्त होगी तो दोबारा जाकर वो उस पेड़ का बहुत प्रेम से दर्शन करना कि कैसे वो गांठ का जैसा सिचुएशन है वहाँ पर, वो दर्शन करना उसका। फिर आप गोविंद कुंड गए, मैंने आपको आधी कथा पहले ही बता दी है कि कैसे भगवान ने इंद्र का गर्भ हरण किया। हाँ, अपने छोटे उंगली के बल से इंद्र का सबसे बड़ा जो शक्ति है समर्थक बादल वो परास्त कर दिए, इंद्र को पश्चाताप हुआ। फिर इंद्र ने भगवान को रिझाने के लिए भगवान से प्रस्ताव रखा कि क्या हम आपका अभिषेक कर सकते हैं, हम आपको रिझाना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है करो। फिर इंद्र ने अपने सारे देवताओं को आदेश दिया, अपने अपने लोक में जितना जितना बेस्ट वस्तु है वो सब लेके आओ। तो वायुदेव से वायुलोक से वरुण, वायुलोक से वायुदेव छत्री लेकर आए, छत्र भगवान के लिए। वरुण लोक से वरुण देव रत्न का सिंहासन लेके आए और ऐसे विशेष विशेष चीज़ें सब अपने अपने धाम से लेके आए। इंद्र ने अपने हाथी को भेजा और आकाश गंगा का 5 सुंड से कई बार पानी मंगवाया और एक ऐरावत कुंड बनवाया जहाँ पर वो आकाश गंगा का पानी इकट्ठा किया। अप्सराओं ने बांदी लाला कर इकट्ठा किया, अप्सरा कुंड बनाया। ऐसे कई कुंड बनाए गए जहाँ दिव्य जल इकट्ठा किया गया। फिर सुरभि गाय को बुलाया गया और सुरभि गाय के दूध के साथ आकाश गंगा के जल के साथ भगवान का रत्न सिंहासन बिठा कर छत्र से आराजित उनको कर उनका दिव्य अभिषेक किया गया। बहुत ही भव्य दिव्य ऐश्वर्य संपूर्ण अभिषेक किया गया देवताओं की उपस्थिति में, गोवर्धन के तलेटी में। तो वो जो जल निकला भगवान का अभिषेक करके स्नान करा के वो एकत्र हुआ और वो बना गोविंद कुंड। गोविंद कुंड जो है भगवान का चरणामृत है, भगवान के अभिषेक का जल है। ऐसा दिव्य जल वहाँ एकत्र हुआ और उसी समय ये खबर जब पहुँची पूरे ब्रज में कि इंद्र ने घोषणा की उस समय कि ये इनका नाम आज से गोविंद होगा। गोविंद का मतलब है भूमि के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी और गाय के स्वामी, 3 अर्थ होते हैं उसके। तो जैसे ही गोविंद देव के रूप में ब्रज के राजा के रूप में अभिषेक हुआ और घोषणा हुई तो उस समय गोपियों ने भी सुना कि भगवान का अभिषेक हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अगर भगवान का गोविंद के रूप में अभिषेक हो रहा है ब्रज के राजा के रूप में तो राधा रानी का भी अभिषेक ब्रज की रानी के रूप में होना चाहिए। तो उन्होंने वृंदावन में इमली तला के नीचे एक समारोह आयोजित किया, सिंहासन पर राधा रानी को बिठाकर वहाँ पर राधा रानी को अभिषेक किया और वृंदावनेश्वरी के रूप में नाम घोषित कर दिया उनका, साथ साथ ही कर दिया। अच्छा, जब भगवान का अभिषेक हुआ तो बहुत सारे ग्वाल बाल जो है ना पेड़ के पीछे छुप छुप के ये दिव्य अभिषेक देख रहे थे। दिव्य मतलब दिव्य नहीं, भव्य। दिव्य तो उसको स्पिरिचुअल दिव्य कहते हैं और भव्य को ऐश्वर्य को भव्य कहते हैं। तो ये जब भव्य अभिषेक हो रहा था तो ग्वाल बाल जो है छुप छुप के देख रहे थे। और जब ये अभिषेक समाप्त हुआ, सब देवता लोग अपने अपने धाम में आशीर्वाद लेके चले गए, तब ग्वाल बाल आके भाग भाग के कन्हैया को मिले और कहते हैं कि हमको भी आपका अभिषेक करना है। तो उन्होंने क्या किया, 2 शिलाओं को रखा, एक को बैक रेस्ट के रूप में रखा, एक को बैठने के लिए रखा। अपने घर से छोटी मोटी चीज़ें लेके आए, दूध लेके आए, पानी लेके आए और भगवान का प्रेम से अभिषेक किया। तो भगवान स्वयं बताते हैं बृहद भागवतामृत में कि मुझे देवताओं के अभिषेक में उतना आनंद नहीं आया जितना आनंद मुझे ग्वाल बालों के अभिषेक में आया। तो भगवान जो है ना भव्यता में आनंद प्राप्त नहीं करते, प्रेम से आनंद प्राप्त करते हैं। तो इतना सादगी में अभिषेक हुआ उनका, लेकिन बहुत भगवान को आनंद आया। और एक बृहद भागवतामृत में भगवान और बताते हैं कि ये देवता लोग बीच बीच में आकर मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। इंद्र ने आया, वर्षा किया, हाहाकार मचा दिया। ब्रह्मा जी आए, सब बछड़ों को छुड़ा के लेके गए और फिर ये लोग बाद में पश्चाताप करते हैं, बाद में खड़े हो जाते हैं, बाद में प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, कृपा याचना करते हैं, मेरा बहुत समय बिगाड़ते हैं इसके अंदर। मेरा मन मेरे बालकों के साथ में, दोस्तों के साथ में खेलने में रहता है, एंड आई वॉन्ट टू प्ले विद देम। बड़ी अभी पश्चाताप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो मुझे खड़े होकर सुनना पड़ता है, लेकिन मेरा मन जो है मेरे मित्रों के खेल में फंसा रहता है, और मैं वेट करता हूँ कब तेरी प्रार्थना खत्म होगी और कब मैं जाके गुल्ली डंडा खिलूंगा। तो भगवान को देवताओं की प्रार्थना से अधिक आनंद आता है अपने ग्वाल बालों के साथ खेलने में। वेदों की ऋचाओं और वेदों की प्रार्थनाओं से अधिक आनंद आता है गोपियों की गाली सुनने में। और गोपियों की गाली वेदों के प्रार्थनाओं से भी ज़्यादा मीठी लगती है उनको, और वो तो वैकुंठ में तो हमेशा ये प्रार्थनाएं चलती रहती है, कंटिन्यूअस ब्राह्मण लोग वेद पाठ करते रहते हैं, लेकिन वो सारा आनंद छोड़ के ब्रज के गोपियों की गाली खाने के लिए वो अवतार लेते हैं, भगवत्ता भूलकर, भगवान का पद जो है उसको भूलकर। तो ये गोविंद कुंड जो है इसके ही पास में अपने माधवेंद्रपुरी जी बैठकर ध्यान कर रहे थे, भूखे थे, किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे। तो गोपाल प्रकट हो गए और गोपाल ने उनको मटके में दूध लाके दिया। कहते हैं यहाँ पर जो औरतें कपड़ा धोती हैं गोविंद कुंड पे, उन्होंने मुझे बताया कोई बाबा आया है और भूखा है, भिक्षा नहीं मांगता है, केवल भजन करते रहता है, तो इसलिए मैं आपके लिए दूध लेके आया हूँ। मेरे गांव में कोई भूखा रहता नहीं है, जो भूखा रहता है मैं उसको दूध पिलाता हूँ, तो आप ये दूध पीजिए आराम से, मैं लोटा लेने को दोबारा आ जाऊँगा। ऐसे करके गायब हो गया बालक। तो उस समय जब माधवेंद्रपुरी ने वो दूध पिया तो उसको उनको दिव्य आनंद का अनुभूति हुआ, शरीर में रोमांच खड़े हुए, कंठ गदगद हो गया, आँखों से आंसू आए, इतना दिव्य स्वादिष्ट दूध मैंने कभी नहीं पिया। तो ढूंढते रहे बालक कहाँ है, बालक का, बालक किधर मिल रहे हैं, बालक तो गायब हो गया। ऐसे कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी ने वो पात्र भी खाया थोड़ा थोड़ा करके, दूध का पात्र। फिर उस रात को सपनों में बालक आया और कहते हैं मैं स्वयं गोपाल हूँ, मैं ही आपको दूध लेकर आया था, और मैं इस जतिपुरा के गिरिराज के पत्थर में मैं छुपा हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो माधवेंद्रपुरी ने फिर ब्रजवासियों की सहायता से उनको बाहर निकाला और फिर उधर पर्वत के ऊपर उनको स्थापना किया गोपाल मंदिर में, जो सफ़ेद रंग का मंदिर देखा आपने, संकर्षण कुंड के पीछे जो सफ़ेद रंग का मंदिर है वहाँ पर उनको स्थापन किया। तो उनकी स्थापना में ही उन्होंने 56 भोग का आयोजन किया, लेकिन ये बात गोपाल जी के प्रकट की पूरे ब्रज में फैल गई, और उस दिन के बाद में 1 साल तक हर रोज हरेक गाँव की तरफ से 56 भोग अन्नकूट चलता रहा, नंबर वाइज, आज हमारा कल तुम्हारा, 1 साल तक कोई वो क्या हुआ ना, मतलब नो गैप, एवरीडे 56 भोग, एवरीडे अन्नकूट महोत्सव, ऐसा दिव्य महोत्सव माधवेंद्रपुरी की वजह से ब्रज में चलता रहा। उसके बाद में फिर गोपाल जी ने उनको स्वप्न दिया और कहा कि मैं बहुत दिन जमीन के अंदर पत्थर में रहा तो मेरा शरीर बहुत गर्म हो रहा है, मुझे चंदन की आवश्यकता है, तो आप मलयगिरी में जाओ और वहाँ से चंदन लेके आना और मुझको लेप कर देना। तो तुरंत गोसाई लोगों को, ब्रजवासियों को गोपाल की सेवा सौंप कर माधवेंद्रपुरी जाते हैं उत्तर की ओर, और कई मन, मतलब एक मन 40 किलो का होता है, कई मन चंदन की लकड़ी इकट्ठा करते हैं, और उस समय वो पहुंचते हैं रेमुना गांव में। तो रेमुना गांव जो है ना वो जगन्नाथपुरी से 6 घंटे का रास्ता है, वहाँ पर खीर चौरा गोपीनाथ की मूर्ति है। तो नाम तो केवल गोपीनाथ जी का था पहले उस समय, और उसका इतिहास ऐसा है, बता दूं आपको मैं, कि प्रभु रामचंद्र वनवास में वहाँ पर एक बार आए थे, और एक बार वहाँ सीता जी के साथ बैठे थे, लक्ष्मण जी भी थे, शायद वनवास में नहीं, वनवास में ही शायद सीता जी थी तो वनवास में नहीं, सीता जी के साथ वहाँ पर आए थे, तो बैठकर अपने आप में मुस्कुरा रहे थे। तो सीता जी ने पूछा क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या रहस्य है? तो उतने में वहाँ से गाय चली गई, गाय का झुंड गाल वाल बालों के साथ चला गया, तो और ज़्यादा मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने कहा कि अगले युग में मैं ग्वाल बनकर आने वाला हूँ, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। तो फिर उसी निवास में उन्होंने अपने बाण से, पत्थर से वो गोपीनाथ की मूर्ति बनाई, और प्रभु रामचंद्र ने गोपीनाथ की मूर्ति वहाँ स्थापना की, और वो गोपीनाथ रेमुना में है जो प्रभु रामचंद्र के बाण के द्वारा बनाए गए। तो वहाँ पर ये पहुँचते हैं, अभी हम त्रेता युग से डायरेक्टली कलयुग में आ रहे हैं, तो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि रेमुना के जो गोपीनाथ है उनको जो खीर भोग लगती है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही विशेष है, अति विशेष। तो वो जानना चाहते हैं कि ये कैसे बनाते हैं, तो मैं मेरे भी गोपाल को वृंदावन में लगा दूंगा। तो वो पुजारी से बोलते हैं मुझे वो खीर मिल सकती है क्या? तो पुजारी कहते हैं अभी थोड़ा रुको, अभी तो भोग लगना बाकी है, तो भोग लगाने के बाद मैं आपको प्रसाद दूंगा। तो इनको ये सुनकर बड़ा दुख होता है कि मैंने भगवान को भोग लगाने के पहले ही खीर का स्वाद लेना चाहा, तो अपने आप को उन्होंने बहुत अपराधी समझा कि मैंने बड़ा अपराध किया कि भगवान को उस खीर को लगाने के पहले ही मैंने चाहा उसको। तो बड़े दुखी होकर दूर चले गए वो, और थोड़े गांव के दूर जाकर पेड़ के नीचे बैठकर पश्चाताप करते हुए भगवान का नाम पुकारने लगे। इधर भगवान पुजारी ने भोग लगाया, मेरे ख्याल से 12 पात्रों का भोग लगाते, 12 पात्र में खीर, विशेष खीर। और भोग दरवाजा बंद किया, फिर खोला, और जब पात्र निकाल के ले गए वो, और रात को भगवान को शयन किया और सो गए। यहाँ माधवेंद्रपुरी जी उपवास कर रहे क्योंकि वो बहुत दुखी थे कि मैंने अपराध किया, तो उन्होंने कुछ भोजन नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऐसे ही बैठ के भजन करते रहे रात भर। तो रात को बीच में पुजारी सोने के बाद में पुजारी के स्वप्न में गोपीनाथ जी आए और बोले कि तुमको पता नहीं है तुमने कितने पात्र रखे, वो तो तुमको पता है लेकिन कितने पात्र निकाल के तुमको पता नहीं है, तुमने केवल 11 पात्र ले गए हो और 1 पात्र मैंने छुपा के रखा है, वो मेरे पैर के पीछे है, और वो मैंने पात्र मेरे प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए छुपा के रखा है, तुम उसको ले जाओ और माधवेंद्रपुरी को ढूंढो और उसको ये पात्र पहुंचा दो मेरी तरफ से। तो रात में ही जग जाते हैं पुजारी, रात में ही शुचिर्भूत होकर गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि भगवान के पीताम्बर के पीछे पैर के पीछे 1 पात्र छुपा के रखा है। तो वहीं वो भाव विभोर हो जाते हैं उधर ही ये देखकर, और उसी समय भोर का समय होता है, वहीं से भाग जाते हैं और गांव में पुकारते हैं माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, आपके लिए ठाकुर जी ने खीर का पात्र चुराया है, आप कहाँ हो, कौन हो, कौन हो, करते 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 आते हैं। तो माधवेंद्रपुरी जहाँ बैठे वहाँ उनको आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो वो उनको आज आके मिलते हैं, कहते आप माधवेंद्रपुरी हो, ये पात्र खीर का स्वयं गोपीनाथ ने आपके लिए चुराया है। तो फिर वो खीर खाते हैं, बड़ा अद्भुत अनुभव करते हैं और वो पात्र भी वो खा जाते हैं, खीर का पात्र। वो पूरे गांव में ख्याति फैल जाती है कि अरे कोई भक्त आया है बाहर से, इसके लिए हमारे गोपीनाथ जी ने खीर का पात्र चुराया है, स्वप्न दिया मुझे, ऐसे महान भक्त। तो देखते हैं कि अभी मेरी ख्याति यहाँ बढ़ रही है, तो भागने का प्रयास करते हैं। उतने भगवान गोपाल जी स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि तुमने जो चंदन इकट्ठा किया है वो वहीं पर घिसो और वहीं पर मेरे गोपीनाथ जी के स्वरूप पर वो लेप लगा दो, मेरे और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, जब तुम गोपीनाथ को लेप लगाओगे चंदन का ठंडक मुझे पहुंच जाएगी। तो फिर वो वहीं रुकते हैं और सारे भक्तों को मिलकर कई मनों का जो चंदन है उसको घिसा के गोपाल जी को चंदन का लेप करते हैं। इस तरह से गोपाल जी और माधवेंद्रपुरी की अद्भुत कहानी ब्रज से रेमुना से कनेक्टेड है। और बीच में आप कहाँ गए, संकर्षण कुंड गए ना आप लोग? संकर्षण कुंड जो है वो भी एक बहुत प्राचीन कुंड है, वहाँ पर संकर्षण भगवान का प्राकट्य है। ये मूर्ति भी जो पहले मूर्ति थी, आज जो मूर्ति वहाँ पर है वो 36 फुट ऊंची है, और जो एक साइड में आपने देखी क्या मूर्ति छोटे मंदिर में, नहीं नहीं वो तो ये बड़े मूर्ति का उत्सव मूर्ति है जो अभी शयन में थी दोपहर में, लेकिन एक बीच में कुंड के पास में छोटे मंदिर में एक छोटे विग्रह हैं जो वो पुराने विग्रह हैं जो वज्रनाभ ने बनाए थे और स्थापन किए थे, और कालांतर में जो लुप्त हो गए थे वो विग्रह, तो वो विग्रह फिर किसी ब्रजवासी के स्वप्न में दिया भगवान में आए, भगवान आए और उन्होंने बोला कि मैं इस कुंड में हूँ, मुझे निकाल कर आप पुनर्स्थापन करना। तो फिर वो उनको ढूंढा गया और उस कुंड के अंदर वो मिले और रखा गया। उसके बाद में कालांतर में वो पूरा कुंड गटर बन गया, इतना गंदा कि हम लोग उसको देखते भी नहीं थे जाते वक्त, इतनी बदबू आती थी, क्या कथा करेंगे, क्या वर्णन करेंगे, है ना। लेकिन हमारे मित्र हैं विनीत नारायण जी, ब्रज फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके उस पूरे गंदी जगह का जीर्णोद्धार किया और आपके सामने आज जो प्रस्तुत है उसको प्रकट किया। अभी ही कुछ महीने पहले उसका उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन में हम भी गए थे उसका अभिषेक करने के लिए। तो उधर वो 36 फुट की सॉलिड मूर्ति जो है स्थापन की गई है, बिल्कुल गोपाल जी के मंदिर के सामने है वो। उसका एक चमत्कार भी हुआ, ये मूर्ति जो है ना, आप लोग कुछ होश में हो क्या? तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो ये जो मूर्ति आज की आपको दिखाई पड़ रही है वो दक्षिण भारत से बनकर आई है, तिरुपति से बनकर आई है, और तिरुपति से उसको बनाकर फिर बड़ी मुश्किल से इतना भारी मूर्ति ब्रज में लाई गई, और फिर 3 क्रेन लाए गए उनको उठाकर अपने जगह पर रखने के लिए जहाँ पर उनको रखना था, स्थापन करना था। तो सारे IIT के इंजीनियर लगे हुए थे वहाँ पर, अपने पूरा गणित करके वजन का और क्रेन का, और उसको सिस्टमेटिक उनको रखने का प्लान किया था। लेकिन चमत्कार ये हुआ, सब लोग ध्यान से सुनिए, चमत्कार ये हुआ कि गोवर्धन को पीट करते हुए मूर्ति को रखना था, जैसे खड़ी है अभी वो, तो गोवर्धन को पीट दिखा खड़े ना, तो वैसे उनको उठाकर पीट के दिखाते हुए इसे खड़ा करना था। लेकिन सब साइंस के सारे नियमों को फेल करते हुए मूर्ति अपने आप टर्न हो गई गोवर्धन की ओर, मूर्ति ने गोपाल जी मंदिर का दर्शन किया और फिर वापस टर्न हो गई और जगह पे खड़ी हो गई। ये सबके आंखों के सामने हुआ। वो सारे IIT इंजीनियर जो वहाँ पर खड़े थे, जिन्होंने मशीन के द्वारा उसको उठाकर रखने का प्रयास कर रहे थे, वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि शंकरेश्वर भगवान ने अपनी इच्छा से घूमकर गोपाल का दर्शन किया मंदिर का, पर अभी वो जिस स्थान में है उस स्थान में खड़े हो गए। फिर उनका पहले जलाभिषेक किया गया 2 मार्च को इस साल 2017 के साल, और 5 मार्च को उनका पंचामृत अभिषेक करके प्रतिष्ठापना की गई। उसमें सारे आंध्र प्रदेश के तिरुपति के पुजारी आए थे, उनकी उपस्थिति में बहुत सुंदर तरीके से उनका प्रतिष्ठापना किया गया। और एक जो पवित्र स्थान था, पवित्रोत्तम स्थान था, एकदम गंदा स्थान बन गया था, वो दोबारा एक बार भक्तों की कृपा से पवित्र स्थान बन गया। हो सकता है आगे 500,000 साल तक वैसे ही रहेगा, कई पीढ़ियाँ हमारी आकर दर्शन लेंगी। एक एक स्थान का उद्धार करने के बाद में कम से कम 1,000 साल तक लाभ होता है उसका, जब तक वो मुद्दा दोबारा नष्ट ना हो जाए या गंदा ना हो जाए या तो जीर्ण ना हो जाए। इसलिए हम सभी भक्तों के हमको ऋणी होना चाहिए। अगर ये स्थान में अगर कुछ, अभी देखो कुंड कैसा है, हमने बहुत पानी भरा हुआ देखा है। अभी देखो पानी, लास्ट टाइम तो बिल्कुल ही साफ था, कुछ पानी था नहीं, ये थोड़ा बहुत पानी, लेकिन ये इतना सुंदर कुंड है, अभी भी देख सकते हैं आप। अगर ये कुंड पूरा भरा रहेगा तो कितना सुंदर दिखेगा। लेकिन ये इसका जीर्णोद्धार भी भक्त लोग ही करते हैं, मेहनत करते हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिनको धाम में श्रद्धा है, धाम सेवा में श्रद्धा है, धाम स्वयं भगवान है इस बात पर श्रद्धा है, धाम और धामी में अंतर नहीं होता है। जिसका धाम है वो धाम भी भगवान है और धामी भी भगवान होते हैं। तो जिनको ये सब बातों पर श्रद्धा है वही फिर अपना समय, अपना परिवार का समय छोड़कर त्याग करते हुए यहाँ पर आते हैं, मेहनत करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, और ये बुलडोजर से घुमाते हैं, साफ करते हैं, कुंड का बॉर्डर बनाते हैं, सेफ स्टेप्स बनाते हैं, जल का व्यवस्था करते हैं, अंदर के स्रोत को ढूंढ के निकालते हैं, वहाँ से जल मिलता है, बारिश से मिलता है, टैंकर से लेके आते हैं, फिर भर देते हैं, फिर वो जगह पुनः अपने पूर्व गौरव के साथ यहाँ पर प्रकट हो जाती है। तो ये हम इसलिए सभी जाने अनजाने भक्तों का हम धन्यवाद करते हैं, जिनकी कृपा के कृपा से ये ब्रज आपके लिए आज भी प्रकट है। हाँ, जैसे आपका बालक अभी 2 साल का होने वाला है, हाँ, जब वो 25 साल का हो जाएगा तो आप थोड़े से बुढ़े होकर आएंगे यहाँ पर, तो बालक को वो बोलने का मौका मिलना चाहिए कि हम लोग आए थे ना बचपन में, तब 2 साल के थे, अगर यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा तो आप खाली बोलेंगे यहाँ पर ना वो गुलाल कुंड हुआ करता था, जब आप 2 साल के थे तब मैं आए थे आपको लेकर। ऐसे बोलने का मौका ना आए इसलिए हमको प्रार्थना करना चाहिए और उन सभी भक्तों का धन्यवाद करना चाहिए जो लगातार मेहनत करते हुए ब्रज का विकास करते हैं, ब्रज के गौरव को प्रकट करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई प्रश्न किसी को पूछना है भगवान के बारे में, लीलाओं के बारे में, कुछ आपको सुनना है, पूछना है, एनीबडी? श्री गुलाल कुंड धाम की, श्री कांठोली धाम की।